ओम शांति। आज के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत है। सत्र की शुरुआत करते हैं हमारे आज के मेहमान और वक्तागण को बुलाकर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं राजयोगिनी आदरणीय शशि दीदी जी, जो हमारे ज्वाइंट चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज के और वाइस चेयरपर्सन है स्पोर्ट्स विंग के। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं स्टेज पर आदरणीय बीके शशि दीदी जी, बीके डॉक्टर जगबीर सिंह जी, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर संजय ददानी जी, बीके वीरेंद्र सिंह गुड़गांव से, बीके वीरेंद्र सिंह गुड़गांव से, बीके रविंद्र जम्मू से, जम्मू से बीके रविंद्र भाई, बीके मनमोहन भाई, मेरी आवाज अगर सुन रहे हो, बीके मनमोहन भाई अगर हो कहीं भी तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बीके मनमोहन भाई, बीके भागीरथ भाई, सभी मेहमानों से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार हमारे आदरणीय शशि दीदी जी का, जो हमारे ज्वाइंट चीफ है ब्रह्मा कुमारीज के। एक बार मैं पुनः अनाउंस कर रहा हूं, हमारे बीके मनमोहन भाई हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं आप स्पोर्ट्स विंग के, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए, और सबसे पहले शुरुआत में आप जानते हैं कि हम लोग उस परमपिता की याद से किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, तो दो मिनट परमपिता परमात्मा को याद करेंगे।
सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर बेहद दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया Oh रात काम मेरे करने से पहले ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ए खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी
अभी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने हमारे मेहमानों का बुके और बेजिस के द्वारा स्वागत करेंगे ब्रह्मा कुमारी बहने आदरणीय शशि दीदी जी हमारे ज्वाइंट चीफ हमारे मेहमान बीके डॉक्टर जगबीर भाई जरा जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते रहिए आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो एक बार उमंग उत्साह जरा जोर से दिखा दीजिए समापन सत्र भी आपका जोश प्रदर्शित होना चाहिए जो आपने यहां से सीखा है भागीरथ भाई थैंक यू और स्वागत की इस श्रृंखला में नेक्स्ट हमारा गीत के द्वारा स्वागत है बीके साक्षी कुमारी साक्षी हैं और उनके गीत के बोल हैं अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें हाँ कुमारी साक्षी तैयार हैं क्या चलिए दोस्तों स्वागत तब तक शब्दों से चलेगा जब तक हमारी कुमारी तैयार होकर आ रही हैं आपके तीन दिन की इस कॉन्फ्रेंस में आज आपके चेहरे बड़े खूबसूरत और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं लग रहा है कि जो यहां के बहने हैं और यहां के भाई हैं और आप हैं लगभग समान एक जैसा सही लग रहा है तो इस वातावरण का फर्क इस आध्यात्मिक भूमि का फर्क आपसे साफ झलक रहा है ऐसा महसूस कर रहे हैं सभी ऐसा महसूस कर रहे हैं ना क्या बात है क्या बात है हाँ तब तक जब तक कुमारी हमारी तैयार हो रही है हम एक्शन प्लान ले लेते हैं तो आदरणीय डॉक्टर जगवीर भाई जी हैं हमारे साथ में और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स विंग के आपका हाँ प्लीज
ओम शांति आदरणीय शशि दीदी जी गेस्ट सभी सभा में उपस्थित भाई और बहनों आप सभी का इस वैलिडिक्ट्री सेशन में बहुत बहुत स्वागत है वेलकम है अभी हम अपने एक लास्ट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से एक नई उम्मीद लेकर के एक नई सोच लेकर के हम लोग जाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट पता चला है इसको समझ करके और अनेक खिलाड़ियों तक हम लेकर के जाएंगे हम कुछ ना कुछ इसका एक्शन प्लान बनाते हैं पूरे साल का कोई ना कोई एक्टिविटीज चलती रहती हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे है ओलंपिक डे है वर्ल्ड हेल्थ डे पीस एंड स्पोर्ट्स डे तो ये डेज के द्वारा भी हम कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं पूरे साल, तो मैं आपके सामने वो कुछ एक्शन प्लान बना के लाया हूं। तो मुझे उम्मीद थी गुरदीप सर भी यहाँ होते, शायद अभी आए नहीं है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आपका एक्शन प्लान। हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि हम कोलैबोरेशन करें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स फेडरेशंस, टू इंक्लूड राजयोगा मेडिटेशन कैंप फॉर माइंड पावर एंड प्रायर टू मेजर नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स। एक जूनियर सब जूनियर पे तो हम लोग एग्जीक्यूट करें ही उसको, जैसे कल डॉक्टर गुरदीप सिंह जी ने बताया था। साथ के साथ जब भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होती है तो उसमें भी हमारे ये जो कैंप हैं, वन डे, टू डेज, थ्री डेज, तो इस ट्रेनिंग कैंप का बहुत बेनिफिट है। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि जब भी इंडिया में कोई ऐसी इंटरनेशनल इवेंट हो तो हम वहां जाकर के उनसे टाई अप करें और अपने फैकल्टीज को वहां भेज करके, और ये राजयोगा ट्रेनिंग फॉर माइंड पावर डेवलपमेंट, ये कभी एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। तो इस स्कीम के साथ भी, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया था कि उनके साथ भी मिलकर के आप कुछ स्कीम ऐसा बनाओ कि उनके कोलैबोरेशन से आपके कैंप चलें। तो बहुत सारे दिन होते हैं जो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, तो वी विल ट्राई टू सेलिब्रेट जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स, तो वहां हम खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 6 अप्रैल को होता है, यूनाइटेड नेशंस का ये डे है। तो उस समय तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कुछ वॉक, कुछ मैराथन, मिनी मैराथन, और भी जैसे फन गेम्स। तो ये हम हर साल इसका प्लान करते हैं। तो क्योंकि अभी ये तो निकल गया है, तो इसके बाद जो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, तो यहाँ पोलो ग्राउंड में भी काफी एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स विंग के फैकल्टीज वहां जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार स्पोर्ट्स पर्सन को भी हम अपने सेंटर्स पे लाकर योगा डे में, खासकर जो हमारे योगा एक्सपर्ट हैं उनके लिए हम प्रोग्राम रखें। फिर ओलंपिक डे 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है, तो उस समय भी भिन्न भिन्न इवेंट्स, एक्टिविटीज, प्लेयर्स को ऑनर करना, जो ओलंपियन है उनको सम्मानित करना, तो ये हम एक्टिविटीज पूरे साल करते रहेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, आप सभी जानते हो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं तो उनके द्वारा कोई ना कोई एक्टिविटीज हम वहां करें। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे 2 जुलाई, तो इस समय भी हम वहां अपने हिसाब से जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हम करेंगे। हमारे जो भी सेंटर्स के डायरेक्टर्स हैं, इंचार्जेस हैं, तो कभी भी उनके नजदीक कोई ऐसा इवेंट होता है तो वी विल मोटिवेट देम कि वो राजयोगा मेडिटेशन का एक टॉक वहां दे करके आए, और इससे भी एक अवेयरनेस बढ़ेगी मेडिटेशन की, तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे खिलाड़ियों को, और निश्चित रूप से मेडल प्राप्त करने में भी इसकी मदद मिलेगी। फिर हम लोग स्टार्ट द ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जो राजयोगा मेडिटेशन के लिए एक बहुत अच्छा 7 डेज का कोर्स बनाया हमने, सर्टिफिकेट कोर्स। तो हमारी जो भी एकेडमीज हैं, खासकर हिल स्टेशंस पे, तो उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी रहेगा पार्टिसिपेंट्स का। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि पहले एक द्रोणाचार्य अवार्डीज जो भी इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर, चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे वो सर्विंग हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स हम करेंगे। और जैसे ऑन अराइवल और डिपार्चर 5 डेज ट्रेनिंग, तो ऐसे वो 1 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा। तो अर्जुन अवार्डीज के लिए, फिर प्लेयर्स के लिए, तो हम देखेंगे कि उसका कैसा रेस्पॉन्स होता है और वो सर्टिफिकेट कोर्स हम फिर पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में, हमारा टारगेट रहेगा कि हम स्टेट के कैपिटल में वो प्रोग्राम करें, ताकि स्टेट का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो आकर के हमारी ट्रेनिंग्स को देखें कि इनका 7 दिन का कोर्स कैसा होता है और कैसे छोटे छोटे बच्चों को इसका बेनिफिट हो सकता है। तो उसकी एक बुकलेट फॉर्म भी बनाएंगे और साथ के साथ वहां जाकर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराएंगे। अभी हमने एक और प्लान किया है, खासकर कोरोना के बाद, कि एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसका रीजन ये है कि बच्चों को हम उसमें प्रमोट नहीं करते। जैसे ट्रैकिंग हो गया, अभी हम लोग कल गए थे सामने वाली पहाड़ी से एक छोटा सा ट्रैक करके आए, तो काफी अच्छा लगा कुछ बच्चों को। तो साइकिलिंग, मैराथन, स्पोर्ट्स बाइक रैलीज, शशि दीदी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे पे एक यहाँ से फ्लैग ऑफ किया था, हमारा माउंट आबू जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, और वो रैली माउंट आबू से उदयपुर गई थी। उदयपुर में 3 जगह प्रोग्राम हुए और बहुत अच्छी उसकी कवरेज मिली। मेडिटेशन को भी हमने प्रमोट किया, साथ के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक राइडिंग, तो इसको भी हमने प्रमोट किया। उसके बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शांतिवन आबू रोड से एक हमारी राइड को फ्लैग ऑफ किया था और वो रैली गई थी दिल्ली में, मतलब ओम शांति रिट्रीट सेंटर तक। वो 36 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स हुए, 15 के करीब बाइकर्स थे, तो बहुत अच्छा लोगों में, एक खासकर युवाओं में, कि ये संस्था केवल माताओं बहनों के लिए या बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये संस्था युवाओं के लिए भी है, यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इस लक्ष्य से वो हम लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट किया और इससे भी एक बड़ी रैली थी दिल्ली में, 75 प्लेसेस 70 डेज 75 राइडर्स। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने वहां से फ्लैग ऑफ किया था, तो मैंने उसमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग में दोनों में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से हम लोग एडवेंचर एक्सपर्टीज के ऊपर भी खास फोकस करेंगे। अभी मैंने तीनों बच्चों को एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा भाई आप क्या चाहते हो, हम क्या करें। तो ये अभी अभी ऑफिस में आ गए थे, तेजस और इनका ग्रुप, तो बोले कि अंकल हमें ना मेडिटेशन सॉन्ग्स बनाने चाहिए इंस्पायरिंग, ताकि खिलाड़ियों को हम मेडिटेशन सॉन्ग सुनाएं, जैसे आपके यहाँ पे आप सुनाते हो, हमें बड़ा मोटिवेशन आता है जब यहाँ के सॉन्ग सुनते हैं। तो ये कहने लगे वो स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पेशल बनवाओ आप, और फिर मेडिटेशन मंत्रास, जो मैं अफर्मेशन कह रहा था, तो ये लोग मेडिटेशन मंत्रा बोल रहे हैं, आई कैन डू इट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, ऐसे कार्ड बना के और उनको दें हम प्लेयर्स को। फिर इन्होंने बोला कि एक मेडिटेशन ऐप भी होनी चाहिए आपकी तरफ से, कि एक ऐप के अंदर वो मेडिटेशन सीख लें, उनकी कुछ कमेंट्री हो, उसके अंदर कुछ अफर्मेशन हो। तो आप चाहो तो इन छोटे बच्चों के लिए एक तालियां बजा सकते हो। तेजस हाथ खड़ा होके, ये तेजस भाई और ये इनका टीम, अभी 10 मिनट पहले इन्होंने सारे पॉइंट दिए हैं, और भी हैं डायरी में लिखे हुए हैं, लेकिन समय की मर्यादा है तो मैंने कहा कि इस प्रोग्राम के बाद मिलना। तो बच्चों के लिए इन्होंने बड़ी टेक्निक निकाली है कि बच्चों में मेडिटेशन कैसे सिखाएं। तो थैंक यू, अगर आप सभी ये पॉइंट से एग्री हैं तो यू कैन सेकेंड दिस बाय रेजिंग योर हैंड। सो थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
थैंक यू डॉक्टर जगवीर भाई। अगर देश में खेलों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप लोग भी अपने बच्चों को अगर खेलों की तरफ प्रेरित करें, उनको प्रेरणाएं दें, मोबाइल और नेट से छुटकारा अगर दिलाएं, तो शायद स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, हॉस्पिटल्स जाने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो कोशिश करें कि इस एक्शन प्लान पे कुछ ना कुछ आप भी अपना सहयोग और इसकी प्रेरणा यहां से लेकर जाएं। चलिए अभी स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी साक्षी को, जिनका गीत है अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें।
बारंबार है ये आंगन ये द्वार।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी साक्षी का, और एक बार जोरदार तालियों से जरा साक्षी का हौसला अफजाई कीजिए। और एक बार पुनः जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे विनम्र गुजारिश, आप बीच में चेयर सवारी खाली हैं तो कृपया वहां आप आ जाइए। पुनः एक बार आपसे इल्तिजा, कृपया करके आगे आ जाइए, पूरे प्रोग्राम का आनंद दिल से उठाइए। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिस्टर संजय ददानी जी, और आप जर्नलिस्ट हैं और लगभग 25 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और लगभग 1200 आर्टिकल्स आपने विभिन्न न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और मैगजीन्स में दिए हैं, और लगभग 25 से ज्यादा जो ओलंपिक रिप्रेजेंट किए हैं जिन प्लेयर्स ने, उनको आपने हेल्प भी किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मिस्टर संजय ददानी जी, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए।
ओम शांति। हिम्मत ना हारिए विजय पथ का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय पथ का नाम लीजिए, सत्य पथ पर रहियो मशाल थाम लीजिए। यह मशाल हमारे पास थी मगर मशाल जलाने वाले का जलाने का काम यहाँ के ये सम्मेलन ने किया। ऐसे सम्मेलन का एक पार्टिसिपेंट होने के नाते मैं पहले आपको बता देता हूँ। वैसे तो ओलंपिक मेरा सबसे अपना सबसे सब्जेक्ट है, मैं 3 बार ओलंपिक मैंने किए हैं, लास्ट 3 ओलंपिक्स मैंने कवर किए और अगला ओलंपिक होने वाला है पेरिस ओलंपिक, वहां भी मैं जा रहा हूँ। मगर यहाँ आने के लिए जैसे ओलंपिक के पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को 4 साल का इंतजार करना पड़ता है, मुझे भी यहाँ आने के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ा। 4 साल से मैं प्रयास कर रहा था यहाँ आने के लिए, कुछ तकलीफें थी, बीच में कोरोना आ गया, मगर इस बार बाबा की कृपा हो गई और बाबा की छत्रछाया में मैं आया हूँ। इसका बहुत बड़ा मुझे सुकून है। मैं जब लंदन ओलंपिक गया था तब वहां मैंने भारत का कोई नहीं हीरा देखा, जिस जहां हम आए आध्यात्मिक केंद्र में, वो भी पहले जवारी थे, जो कोहिनूर देख के मुझे इतना सुकून मिला, वहां से मेरी नजर नहीं हटती थी। लंदन के बाद में 2 दिन के बाद जैसे ओलंपिक खत्म हुआ, उस ओलंपिक में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, 6 मेडल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री भारत ने जीते। उसके बाद मैं पेरिस गया, पेरिस में खूबसूरत मोनालिसा का जो चित्र है, हंसता हुआ जो चित्र है, वो देखकर वहां से मेरे पैर नहीं थमते थे। उसके बाद में मैंने बहुत दुनिया घूमी, मैंने 3 ओलंपिक कवर किए, 2 एशियन गेम कवर किए, 2 वर्ल्ड कप कवर किए क्रिकेट के, मगर यहां आके मुझे ऐसा लगता है मैं यहां ही रह जाऊं, यहां ही साधना करूं और यहां का ही बन जाऊं। तो इस प्रकार का सुकून आनंद यहां मिला है, इसलिए मैं पहले अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस सम्मेलन के आदरणीय बहन जी शशि जी और जगबीर भाई जी। मुझे लगता है हिंदुस्तान ओलंपिक में कब से शुरू हो गया, हिंदुस्तान का ओलंपिक मेडल जिसने जीता था उसके बारे में मैं आज बोलने वाला हूं, वो मेरा सब्जेक्ट है, मगर हिंदुस्तान का जो मेडल का सिलसिला है 2000 सालों के शुरू है शशि बहन जी, और तब से आज तक हमने मेडल जीते, क्योंकि उसके पहले यहां आपने स्पोर्ट्स विंग बनाई। ये स्पोर्ट्स विंग का जो जादू है, स्पोर्ट्स विंग का जो तरंग है, वो मेरे को लगता है भारत के खिलाड़ियों को मिली। और 2000 के पहले हमारा ओलंपिक का सिलसिला था, हमें कुछ मेडल नहीं मिल रहे थे, मगर 2000 सालों के बाद यह सिलसिला चालू हो गया। हमारे बीच विनोद कुमार जी बैठे हैं जिन्होंने कल सूत्र संचालन किया, वो लास्ट ओलंपिक के टोक्यो ओलंपिक के लिए, विनोद कुमार जी है, माफ करना मुझे विनोद कुमार जी है, वो टोक्यो ओलंपिक लास्ट ईयर गए थे और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वहां गए थे ब्रह्मा कुमारी का अपना राजयोग लेके, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ओलंपिक्स पैरालंपिक हिस्ट्री में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जहां ये अपना राजयोग जाता है और जादू फैलता है। आज का जो विषय है इस राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का, वो है मन की शक्ति। और जिस ओलंपिक का मैं अभ्यास करता हूं, वैसे तो कल जगबीर भाई ने बताया कि सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेडल किसने जीते, माइकल फ्लेप्स ने, मगर अकेले माइकल फ्लेप्स ने जितने मेडल जीते उतने आज हिंदुस्तान ने जीते हैं। हम अगर हिंदुस्तान की मेडल टैली देखें तो हमने 10 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो टोटल 35 मेडल जीते हैं। उसमें से 15 मेडल का अंतिम सामना, 15 मेडल कैसे जीते वो मैंने देखे है, मगर उसके एक मेडल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका रिश्ता भी ब्रह्म कुमार से है, कल वहां हमने वीडियो देखा था पीवी सिंधु का, उसने बताया मेरे विजय में किसका पूरी तरह से है, वो तो है यहाँ के राजयोग का। मैं बताता हूं, मुझे बताने को खुशी होती है, जब रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, हमारे पुरुष खिलाड़ी ने एक भी मेडल नहीं जीता था, तब दो ही महिला ने पदक जीता था, वो है साक्षी मलिक और दूसरी थी पीवी सिंधु। और ये सिंधु का सिलसिला आगे चला, सिंधु ऐसी पहली महिला है आज भी भारत की, उन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीता है। उसका कारण क्या है, उसने राजयोग का अभ्यास किया और उसी राजयोग की मशाल जलाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और इसी में अपने दिल से सभी का खुशियां अदा करता हूं। मगर मैं यहां खड़ा हूं आज आपको बताने का ओलंपिक का इतिहास क्या है। ओलंपिक में ऐसा ही हुआ था, जो मन की शक्ति थी उसका प्रयोग सबसे पहले भारत में हुआ था, और भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता है कोई बता सकता है मुझे? थैंक यू। भारत का पहला ओलंपिक पदक केडी जाधव रेसलिंग में 1952 के हेलसिंकी के ओलंपिक में जीता था। स्वतंत्र भारत का वो पहला ओलंपिक मेडल था। अगर भारत के मेडल के ओर हम देखते तो उसके दो पार्ट बनते हैं, एक स्वतंत्र के पहले और एक स्वतंत्र के बाद। स्वतंत्र के पहले 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हो, 1930 का लॉस एंजलिस ओलंपिक हो, 1936 का बर्लिन ओलंपिक हो, जहां हिटलर ने ध्यानचंद को खेलते हुए देखा था, वहां हमने 3 हॉकी के मेडल जीते, हमने हॉकी की हैट्रिक बनाई। उसके बाद स्वतंत्र के बाद सिलसिला शुरू हुआ वैयक्तिक खेलों में, इंडिविजुअल खेलों में मेडल मिलने का। वो पहला मेडल जीता था महाराष्ट्र के किसान के बेटे में, रेसलिंग में मेडल जीता था, बैंटम वेट में मेडल जीता था, मगर उस मेडल की कहानी मैं आपको सुनाने के लिए आज यहां खड़ा हूं। वैसे तो उन्होंने पहले मेडल जीता था 1942 में, पहली बार ओलंपिक में गए थे वो 1948 में। कुछ ही महीने पहले देश को स्वतंत्र को आजादी मिली थी, 1940 का वो समय था, खाशाबा ने ट्रायल दी, खाशाबा जाधव ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गए, मगर हमारे खिलाड़ी 1948 तक हवाई जहाज से नहीं जाते थे, हमारे खिलाड़ी पानी के जहाज से जाते थे। तो आप सोचिए 1948 में जब हमारे खिलाड़ी गए थे, 1936 में गए थे, खाशाबा जाधव 1948 में पानी के जहाज से गए, मुंबई से उनका जहाज था और लंदन तक वो सफर था, 1.5 महीने का सफर था। उसके बाद आपको पता होगा कि आपने सबने दंगल फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान का एक सीन है, वो अपने छोरियों के लिए उसने खास मैट बनाई थी, मगर वो गद्दी की मैट थी। अब सोचिए 1940 का टाइम था, तब किसी प्रकार की मैट नहीं थी, खाशाबा के कोच ने उनके लिए ऐसे जिस गद्दी पे मैं खड़ा हूं ऐसे गद्दी के मैट बनाई, मगर ओलंपिक के लिए अलग मैट थी। वैसे ही खाशाबा मेरे ही प्रांत से थे, महाराष्ट्र से, मुझे आज जितनी तकलीफ हो रही है थोड़ी हिंदी बोलने की, तो उनको तो इंग्लिश बोलने की बहुत तकलीफ होती। इन सब हर्डल्स के बाद वो जब जाते हैं, कभी भी उन्होंने अपने मैच पे कभी खेला नहीं है, मगर वो मन की शक्ति के कारण उन्होंने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का हराया, दूसरी मैच में उन्होंने अमेरिका के पहलवान को हराया रेसी को, और तीसरी मैच में उनका रोलिंग फॉल हुआ और वो पहली बार चौथे आ गए थे 1948 के ओलंपिक में। और उसी दिन उन्होंने ठानी, जब अगला ओलंपिक होगा मैं देश के लिए मेडल जीतूंगा, मैं अपने भारत के लिए मेडल जीतूंगा। और वो मन की शक्ति उनके पास एक दिन नहीं थी, 2 दिन नहीं थी, पूरे 4 साल थी, 1948 से 1952 तक। खाशाबा वापस आ गए फिर एक बार जहाज से, और उन्होंने अपनी कुश्ती की साधना शुरू की। मुझे बताने को बहुत गर्व होता है, खुशी होती है कि ओलंपिक पदक एक दिन से नहीं मिलता। आमिर खान का डायलॉग है दंगल में, जो मेडल होते हैं ना पेड़ पे नहीं लगते, वो मेहनत से प्यार से बनते हैं। उसी प्रकार खाशाबा जाधव जी ने मेहनत की और वो ट्रायल के लिए गए 42 में, मगर उस ट्रायल में उनके साथ अन्याय हो गया, उनको गलत तरीके से हराया गया और उनके लिए 1942 का ओलंपिक का दरवाजा बंद हुआ चुका था। मगर उसी टाइम कुछ पंजाब के रेसलर को भी अन्याय हुआ था, और तब भारतीय ओलंपिक संगठन के जो प्रेसिडेंट थे राजा भलविंदर सिंह, उनको उन्होंने पत्र लिखा मुझ पे अन्याय हुआ है, पंजाब पे मल्लों पर भी नाइंसाफी हुई थी तो उन्होंने तुरंत लिखा भारतीय कुश्ती महासंघ को कि इनकी ट्रायल ली जाए। तो फिर एक बार ट्रायल हुई और खाशाबा ओलंपिक के लिए चुने गए। ये तो पहला पड़ाव पार किया, मगर दूसरा पड़ाव बहुत बड़ा था। उस टाइम ओलंपिक के जाने के लिए उनको चाहिए थे सिर्फ 17,000 रुपए, मगर उस टाइम भारतीय ओलंपिक संघ और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देता था, अपने खर्चों से ओलंपिक जाना पड़ता था। तब खाशाबा जी ने महाराष्ट्र के घर घर में जाके एक एक रुपया चंदा इकट्ठा किया और ओलंपिक के लिए पैसा खड़ा किया। और एक बड़ी बात है भारत के इतिहास के लिए, उनके जो कॉलेज के प्राध्यापक थे दाभोलकर जी, उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा और उससे थोड़े पैसे दिए। कैसे पैसे खाशाबा ने चंदा इकट्ठा किया और वो कलकत्ता से जाने वाली थी फ्लाइट की, वक्त गुजर गया था, अब जहाज से नहीं जाने वाले थे। हमारे खिलाड़ी फर्स्ट टाइम 1942 में हवाई जहाज से जा रहे थे, कलकत्ता से फ्लाइट थी, 3,000 रुपए कम पड़े थे। उनके जो कोच थे गोविंद नागेश पुरंदरे, उन्होंने कोल्हापुर के एक बैंक से कर्जा लिया, उनको भेजा, इसलिए खाशाबा ओलंपिक को गए और भारत को पहला ओलंपिक मेडल मिला। मगर ये जो कठिनाई है खत्म नहीं होती है। खाशाबा फिर ओलंपिक के मैदान में गए, उन्होंने अपने मन में छाई पूरी तरह ठाना था, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। जिस प्रकार कल हमारे सूरज भाई ने बताया, हमें जीतना है, हमें बलवान बनना है, उस प्रकार का निश्चय 4 साल पहले उनके दिमाग में था, वही था ओलंपिक मेडल, ओलंपिक मेडल और ओलंपिक मेडल। मुझे लगता है सूरज भाई उनको मिले होंगे, उन्होंने दीक्षा दी होगी, उसके कारण खाशाबा के मन में वो मशाल पेटी थी, वो जोत पेटी थी, उसके कारण इतनी कठिनाई के बाद भी खाशाबा मैदान में गए। और मुझे कहने का बहुत खुशी हो रही है, उस टाइम भारत किसी भी ओलंपिक में किसी को मेडल जीतने के लिए कम से कम 5 to 6 bouts जीतने होते हैं, तो खाशाबा ने उस ओलंपिक में मेक्सिको के मल्लों को हराया, कनाडा को मल्लों को हराया और उस ओलंपिक में खाशाबा ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के मल्लों को भी हराया और भारत की कुश्ती का परिचय दिया। 21 जुलाई 1942 का वो दिन था, लगभग खाशाबा का पदक तय था कि हिंदुस्तान पहली बार आजादी लेने वाला हिंदुस्तान पहली बार ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही मैं ओलंपिक कवर करता हूं, हमेशा ऐसे ही रहता है, ओलंपिक शुरू हो जाता है और हम जगवीर जी जैसे पढ़ते हैं न्यूज में, आज भारत पहले राउंड में हरा, आज हॉकी में बाहर गया, आज हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी दूसरे राउंड में बाहर गए और हारने का सिलसिला चालू था। खाली वैसे तो उस ओलंपिक में 1942 के ओलंपिक में भारत के 8-9 खेल के खिलाड़ी गए थे, साइकिलिंग के गए थे, एथलेटिक्स के गए थे, मगर हॉकी के बाद एकमात्र ऐसे कुश्ती का खेल था वहां भारत का झंडा लहरा रहा था। 3 मेडल जीते थे और 23 जुलाई 1942 का दिन आया और उनके जो मैनेजर थे दीवान प्रताप चंद, उन्होंने खाशाबा केडी यादव को बोला, केडी यादव आज छुट्टी का दिन है, तुम छुट्टी ले लो, आराम कर लो, तुम्हारी कल मैच होगी। मगर खाशाबा अपने अंतिम प्रेरणा से प्रेरित थे, उन्होंने अपनी बैग उठाई, उन्होंने मन में ठानी, चलो मैं बाकी के मैच देखूंगा, बाकी के देश कैसे खेले खेलते हुए देखूंगा, मैं उसमें अपनी गलतियां ढूंढूंगा और अपने देश के लिए पहला मेडल जीतूंगा। सही देर तक खाशाबा ने अपनी किट बैग उठाई और चल पड़े वो हेलसिंकी के रेसलिंग हॉल तक। वो बाकी देशों के मैच देख रहे थे और उसमें से एक आवाज आई, केडी यादव फॉर्म इंडिया। खाशाबा यादव को बहुत धक्का लगा, ये क्या हो रहा है, मगर उनकी मन की शक्ति इतनी विशाल थी, मन की ताकत इतनी अपार थी, उन्होंने खाली 2 मिनट मांगे और वो कुश्ती के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जापान के मल्लों को हराया और देश को पहला मेडल जीता। कितनी कठिनाई के बाद जीता, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, उनको ट्रायल में प्रॉब्लम हुआ था और बाद में जहां ओलंपिक को गए तभी प्रॉब्लम आया, तभी उनके लिए बहुत कठिनाई आई थी। उनके मैनेजर ने कहा था आज छुट्टी है, मगर यह सब प्लान हुआ था। मुझे लगता है ओलंपिक मेडल आपके गले में नहीं जाता, वो मेडल ही आपको ढूंढ के आपके गले में आ जाता है। वैसे ही खाशाबा के साथ हुआ, उसके बाद जितने मेडल वीर हमारे देश में उनके साथ हुआ। यह खाशाबा का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता है। खाशाबा जब हिंदुस्तान आते हैं तो उनको 4 साल किसी भी नौकरी नहीं मिली है। मुझे आज इस मंच पर थोड़ा खेद होता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, मगर मैं पहले हिंदुस्तान में हूं, कि आज के ओलंपिक विनर जितने हैं हिंदुस्तान के, 23 ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल है, उनको सभी को अर्जुन अवार्ड उनके वो जब जीवित थे तब मिला था, मगर खाशाबा ऐसे एकमात्र खिलाड़ी है उनके मरणोत्तर उनको वो अवार्ड दिया गया। क्योंकि तब वक्त ही वैसा था। आप सब जानते हैं ये खेल का सम्मेलन चल रहा है हमारे भारत में 1982 के बाद। जब एशियन गेम हुआ, पीटी उषा ने 4 मेडल जीते। एशियन गेम के बाद खेल का महत्व आ गया। इस बीच सब खाचाबा को भूल गए थे, खाचाबा को पूरी तरह भूल गए थे, मगर खाचाबा ने अपने मन की ताकत से देश को पहला मेडल जिताया। मगर उसके बाद देश को मेडल जीतने के लिए 44 ईयर्स का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद लिएंडर पेस ने मेडल जीता, मगर मुझे तो पूरी की पूरी कहानी मालूम है 35 मेडल की, उसमें मेरी 4 किताबें ही है। मगर मैं आखिरी जो मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की, उसकी की कहानी खाचाबा के लाइन पे जाती है, मगर दोनों में बहुत वैसा फर्क है। नीरज चोपड़ा भी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने रियो ओलंपिक को खेलना चाहते थे, मगर नसीब का खेल कैसा होता है देखो दोस्तों। जब रियो ओलंपिक के लिए नीरज चोपड़ा तैयार थे, उनको ओलंपिक खेलना था, मगर ट्रायल में उतना वो दूर तक अपना भाला फेंक नहीं पा रहे थे। मगर उसी बीच में उन्होंने जूनियर जागतिक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली और देश के लिए जैवलिन का पहला मेडल जीता। और उसका तब नीरज का स्कोर था 85 समथिंग। उसके पहले नीरज ने एशियन गेम खेला था, उसके पहले नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम खेला था और नीरज ने उसमें मेडल जीते थे। मगर जिस दिन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने मेडल जीता, उसके 2 दिन ही पहले ओलंपिक ट्रायल के दिन खत्म हुए थे, इसलिए नीरज खेल नहीं पाया। नहीं तो इतिहास कुछ अलग रहता, नीरज टोक्यो रियो ओलंपिक मेडल जीता। फिर एक नीरज ने अपने मन में ठानी, जो जैसे खाचाबा ने ठानी थी, मैं 4 साल इंतजार करूंगा और देश के लिए मेडल जीतूंगा। फिर खाचाबा की तरह नीरज ने अपने मन में ठानी, मगर नीरज के लिए सबसे बड़ी बात थी जब 4 साल इंतजार किया उसने, उसके राइट शोल्डर को इंजरी हो गई। उसके कारण एक ऐसा वक्त आया कि जो भारत में पहला गोल्ड मेडल देता है एथलेटिक्स में, वो जीतेंगे कि नहीं। मगर नीरज ने वो मेडल जीता और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि कोरोना के बाद जब यह ओलंपिक हुआ, जो ओलंपिक हम देखने गए थे, बहुत कठिनाई का वो ओलंपिक था। मैदान में कोई प्रेक्षक नहीं था, उसके अलावा ही हमारे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किया उस ओलंपिक में भारत ने, 7 मेडल जीते। और उसमें जो हॉकी का मेडल था, मैं कभी वक्त मिलूंगा, आज मेरे पास वक्त कम है, मगर कभी वक्त मिलूंगा तो उसकी पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा कि हॉकी के मेडल में जो तरंग आती है, जब हम किसी खिलाड़ी पूरे टीम में अगर तरंग की उम्मीद आती है, पूरे टीम में जोश आता है, हमारे टीम को जीतना ही है, उस दिन वैसा ही हुआ। हमने फर्स्ट 40 सालों के बाद ओलंपिक हिस्ट्री में, ऐसा नहीं लग रहा था, जब ओलंपिक को गया था, मैं 2012 में गया था, तो भारत हिंदुस्तान की हॉकी टीम भी वहां नहीं खेल रही थी। 16 को भी ऐसा लग रहा था हम मेडल जीतेंगे कि नहीं, मगर हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने मन में ठानी, एक ओलंपिक विजय की लहर बन गई और हमने जर्मनी को हरा के एक हिस्टोरिकल मेडल जीता। अब मुझे लगता है शशि जी, यह लहर अब शुरू हो गई हिंदुस्तान के खेल में, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में, कि हमें कुछ करना है देश के लिए और हमारे लिए। वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं फिर एक बार सभी पार्टिसिपेट की ओर से इस ब्रह्मचारी ब्रह्मकुमारी संस्थान का आभारी करता हूं। वैसे तो आध्यात्मिक और मेरा नाता बहुत पुराना है। आध्यात्मिक भारत के कुछ संगठन है, उन्होंने कुछ स्टेडियम खड़े करे हैं। हमारे महाराष्ट्र में काका महाराज है, उन्होंने एक स्टेडियम खड़ा किया है कोकण में, वहां हर साल चैंपियनशिप होती है। मगर भारत में आज के दिन स्टेडियम है, भारत में आज के दिन खिलाड़ी है, भारत में आज के दिन अच्छे कोचेस है, मगर जीत का मंत्र देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट आपने खुला किया, इसलिए मैं तहे दिल से फिर एक बार आपका आभारी मानता हूं। लेखक हूं मैं, इसलिए मैंने भी जब से सम्मेलन शुरू हुआ है ना, हर कोई दो लाइन बता रहा है, तो मैंने ही कल ये सम्मेलन के कारण मुझे जो खुशी हुई है, वैसे तो मैं ओम जानता था, मगर यहां आके मुझे शांति का भी एहसास मिला, तो ओम शांति के लिए मैं फिर एक बार सभी खिलाड़ी की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ओलंपिक केवल खेल नहीं, ओलंपिक केवल खेल नहीं, यह है एक जीवन प्रणाली। ओलंपिक केवल खेल नहीं, यह है एक जीवन प्रणाली। अबू आने वाले खिलाड़ियों की नहीं होगी आप पदकों की झोली खाली। अबू आने खिलाड़ियों की अब नहीं होगी पदकों की झोली खाली। ये मैं नहीं कहता, ये आशीर्वाद है शिव बाबा का। अब देश जीतेगा, तिरंगा लहराएगा। ये वादा है हम सबका, धन्यवाद।
थैंक यू ब्रदर संजय ददानी जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। और मन की शक्ति हर खेल में ही चाहिए, और हमारे ग्रंथों में गीता में पहले ही लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, कि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। तो गेम जीतना अगर आपके मन की एकाग्रता है तो बड़े आराम से आप वो कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ में हैं बीके वीरेंद्र सिंह जी, गुड़गावा से आप हैं, फॉर्मर चीफ इंजीनियर हैं आप हाउसिंग बोर्ड के। आप ट्रैकिंग के लिए काफी जगह जाते रहते हैं अनेक पहाड़ों पे, जैसे हमारे उत्तराखंड वाली साइड है जो भी पहाड़ है वहां के, और वॉकिंग एज हॉबी आप लेते हैं उसको, और स्पोर्ट्स को भी अच्छा प्रमोट करते रहते हैं। तो आइए अभी हम सुनते हैं वीरेंद्र सिंह जी से।
ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी, विद्वत मंच और प्यारे बहन भाइयों, इस मंच पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा मुझे बताया गया है, मनुष्य के जीवन की सफलता को नापने के लिए मोटे मोटे 5 पैरामीटर्स हैं। अगर इन 5 पैरामीटर्स में आप कामयाब हैं तो आपको माना जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। इनमें सबसे पहला आता है फिजिकल, दूसरा आता है फाइनेंशियल, तीसरा है सोशल, चौथा पैरामीटर है इमोशनल, और 5वां पैरामीटर है स्पिरिचुअल। भाइयों बहनों, जैसे कि बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। तो जिस नेशनल सेमिनार में हम आ जाए हैं, इसका नाम ही खेलकूद है। खेलकूद से आपको निरोगी काया तो मिलती है। जब आपकी काया निरोगी होती है तो बाकी दूसरे सुख भी आपको तभी भागते हैं। आपके पास कितना ही सुख साधन हो, धन संपत्ति हो, और एक थोड़ा सा जाड़ में दर्द भी हो ना, वो सारा फिक्का लगता है। जाड़ का दर्द ही पहले याद आता है। तो ये जो स्पोर्ट्स हैं आपको फिजिकली फिट रखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आता है फाइनेंशियल। मेरे से पहले वक्ता ने बताया किन डिफिकल्टीज में प्लेयर्स ओलंपिक जाते थे, पर उन्होंने बताया कि अब वो डिफिकल्टी नहीं रही है। अब खेलों में जितना मान शान सम्मान और पैसा है, इतना शायद किसी और प्रोफेशन में है, और जितनी कम उम्र में ये सब आपको मिल जाता है, ये और किसी प्रोफेशन में, फिल्म स्टार्स को भी इतनी कम उम्र में नहीं मिलता। नीरज चोपड़ा जी का जिक्र कर रहे थे, 19 साल की उम्र में उनको कितना मान शान सम्मान मिला है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो स्पोर्ट्स आपको जीवन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। वैसे भी आजकल की सरकारें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा सरकार ने तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी हुई हैं। आप ओलंपिक में वर्ल्ड मेडल लाओ, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की आपको नौकरी मिलती है, 1 करोड़ रुपया इनाम मिलता है। और ये जो अफसर होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, ये जो पढ़ लिख के अफसर आते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। मीटिंग होती है ना, तभी हम बात करते रहे, ये ओलंपिक आड़ा भाई, तो मान सम्मान वहां भी बहुत मिलता है, बहुत प्राप्ति होती है। तीसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट। समाज में आपको लोग जाने पहचाने, आपको इज्जत दें, तो इसमें तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप पोडियम पे जाते हैं मेडल आपको मिलता है और जब राष्ट्रगान बजता है तो पूरा देश खड़ा होता है। इससे ज्यादा सोशल रेस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्निशन और किसी फील्ड में नहीं है जो स्पोर्ट्स और गेम्स आपको देते हैं। अगला एस्पेक्ट है इमोशनल। सक्सेसफुल आदमी को इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और जब आप गेम और स्पोर्ट्स करते हैं तो आप रोज इससे रूबरू होते हैं। कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी आप चोटिल होते हैं और फिर खड़े होते हैं। तो गेम्स आपको बाय डिफॉल्ट इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जो बच्चे खेलते हैं वो इसके अनुभवी होंगे कि हार जीत आपके लिए एक समान हो जाती है। खेल है, खेल की तरह खेलना है, तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भाइयों बहनों, ये जो ऊपर वाले चारों एस्पेक्ट है ना, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल, ये सारे इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है। जो दौड़ते हैं उनका अनुभव होगा, अगर थोड़ा भी बोझ आपकी पीठ पे बांध दिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और भी किसी तरह का बोझ आप पे हो तो आपकी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई बोझ अपने मन पे लेके चलो फिर क्या। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अपना बोझ हल्का करना सिखाया जाता है कि आप अपने मन का बोझ हल्का कैसे करें। वो जो एक्स्ट्रा बूस्ट है ना, लास्ट मोमेंट पे एक्स्ट्रा बूस्ट जो कन्वर्ट करता है आपके मेडल को सिल्वर से गोल्ड में, वो एक्स्ट्रा डोज दोस्तों परमात्मा से मिलती है। जब आप उसको याद करते हो, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, जो सिर्फ पावर मिलती है, जो करंट मिलता है, ये एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी का है जो आपको इस संस्था में सिखाया जाता है, दिया जाता है। यहां पे लाइव एग्जांपल्स हैं। हमारी दादी जानकी जिस गेम को लेकर चली थी कि मुझे हरेक को बाबा से मिलाना है, हरेक के जीवन को पलटना है, हरेक के जीवन में खुशी लानी है, वो अपनी इस गेम स्प्रिट को 103 साल की उम्र तक भी उसी स्प्रिट से खेलती रही जिस स्प्रिट से पहले दिन से खेलती थी। ये उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का कमाल था, परमात्मा से उनके लगाव का कमाल था। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लेके गेम खेलते हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा पावर मिलती है जो आपको मेडल दिलाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ जब आपके पास नाम मान शान आती है तो इसके साथ बुराइयां भी आती हैं। अभी जो दिल्ली में धरना चल रहा है खिलाड़ियों का, उससे आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह के हालात में आपको गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी संगत आपको मिलती है, कितने लोग नशे में बदल जाते हैं। उस सब से बचने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी आपको रास्ता दिखाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हर जीवन के एस्पेक्ट में चार चांद लग जाते हैं। मुझे जो टाइम दिया गया था उसकी मर्यादा होगी है। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू वीरेंद्र भाई जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ही हमारा कम है और वो यहां से आप लेकर जा रहे हैं, तो उसकी बहुत बहुत खुशी है। उसको भी आप अपने साथ शामिल करेंगे। आपके स्टूडेंट्स हों, आप जहां भी कोचिंग कर रहे हैं, तो कृपया इस एस्पेक्ट को आप अच्छे से उसमें शामिल कर दीजिए। अभी हमारे बीच में रविंदर भाई जी हैं जम्मू से, तो कृपया मैं बहनों से अनुरोध करूंगा कि रविंदर भाई जी का स्वागत बैज और बुक से करें। एक बार जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत कीजिए रविंदर भाई जी। और अभी मैं रविंदर भाई जी से अनुरोध भी करता हूं, आप जम्मू से हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब के, रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट से आप हैं, लाइफ मेंबर हैं स्पोर्ट्स विंग के, और बहुत सारे राज्यों का प्रोग्राम्स आप जम्मू में और स्पोर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आदरणीय रविंदर भाई जी।
ओम शांति। सभी खुशी से बोलें आज तो, ओम शांति। परम आदरणीय सर्वोत्तम शिव बाबा, उनके माध्यम ब्रह्मा बाबा और हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय राय योगिनी ब्रह्मा कुमारी दीदी शशि जी, जो हम सभी को साथ लेकर के चल रही हैं, समय समय पे हमें उमंग साथ देते हैं। आई वेल डिक्ट्री में आप सभी के साथ जो मिलना हो रहा, इसमें आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी ऐसे ऐसे लोग हुए, आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी मैथमेटिक्स में पीएचडी थे, प्रोफेसर रहे और आध्यात्मिकते के एक नामी ग्रामी गुरु रहे, स्वामी विवेकानंद के भी वो गुरु हुए। हमने उनके लिए पढ़ा है कि उन्होंने जब मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे तो उनके हाथ में पेपर आया, उन्होंने क्वेश्चन पेपर को देखा, कुछ ऐसे भी होंगे कि कभी उल्टा कभी सीधा, कभी 13 नंबर वाले को कभी फर्स्ट नंबर वाले को देख रहे होंगे क्वेश्चन को, कौन सा करूं। उन्होंने पेपर देखा, उस पर थे ओनली 30 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10। उन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 13 तक हाफ टाइम से पहले सारे के सारे आंसर शीट पर उतारे और हाफ टाइम से पहले अपनी शीट जमा कराने चल पड़े। एग्जामिनर ने कहा भी तो हाफ टाइम हुआ, उन्होंने कहा कि मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैंने चेक भी कर लिया है, जो मुझे आता था मैंने लिख दिया है। और 13 क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर शीट पे नीचे लिख दिया सिलेक्टेड एनी 10। प्लेयर्स को भी इस किस्म का होना चाहिए कि अगर कोई कंपटीशन आ रहा है, मैं थोड़ा फोबिया में हूं, अगर कोई और चीज में कोई ऐसी चीज नहीं, अपने जीवन के अंदर अगर एम्बिशन मैंने चुन लिया है कोई, तो उसी उसके लिए स्वामी रामतीर्थ परमहंस के शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या कहा युवा के प्रति, उन्होंने कहा हे युवा, जागो, उठो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। कि जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तब तक कुछ भी हमें देखने सुनने की जरूरत नहीं। आपने यहां पर सुना पीवी सिद्धू के बारे में, गोपीचंद जी उनके कोच, उन्होंने कहा जब तक मैं ओलंपिक खेलने नहीं गई तब तक मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, और जब मैं जीत कर आई तब मुझे कहा कि आप मोबाइल यूज कर सकती हो, शायद आपने भी सुना होगा ये। इसलिए अगर मैंने कोई रास्ता चुना है तो उस रास्ते से चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस देने वाले नहीं, चैलेंजेस स्वीकार करने वाले बने किसी भी किस्म के, तब हम गेम में या एक जीवन में, जीवन भी एक गेम है, कहा जाता लाइफ इज ए गेम वी प्ले इट, जीवन एक गेम ही तो है जो हम खेलते हैं, तो इसे कैसे खेलें। हमारे बीच में ही आज कोई एंजाइटी में गुजर रहा है, कोई डिप्रेशन में गुजर रहा है, जो बहुत लायक स्टूडेंट अपने आप में वो ज्यादा उधर जा रहा है कम, इसलिए ये क्यों, गेम के अंदर किसी किस्म का फोबिया किसी किस्म की कोई टेंशन, नथिंग। सचिन तेंदुलकर की तरह 1997-96 पे भी अगर वो गलत भी आउट दिए तो भी हंसते हंसते वो नहीं देखता किसी की ओर, कुछ ऐसे आंख करके भी देखते हैं, लेकिन वो नहीं। फिर भी उसको क्या कहा गया, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, क्रिकेट का क्या कहा गया, भगवान कहा गया। तो अगर वो हमारे भारत के लोग हमारे बीच में हैं, तो हमें जिस गेम को चुना है, जिस लक्ष्य को चुना है, उसके शिखर पर जो लोग पहुंचे हैं उनके बारे में पढ़ें, उन्होंने क्या किया ऐसा, और फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके इधर उधर ना देखें, अपने लक्ष्य की तरफ देखें। और ये ब्रह्मा कुमारी का यो आप जिस प्रोग्राम में 3 दिन आप अटेंड किया, ये आपको जिस तरीके से एक पेशेंट को हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप लगातार 1 बाय 1 ड्रॉप एक जैसे आते, ब्लड चढ़ाया जाता लगातार एक जैसे ड्रॉप आते, शिवलिंग पर वाटर आता ड्रॉप बाय ड्रॉप एक जैसा आता, इसी तरीके से जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता उसमें एक इंजेक्शन भी लगाया जाता। ये मेडिटेशन आपको आपकी गेम के अंदर वो इंजेक्शन का काम करेगा, ईश्वरीय शक्तियां आपको इंजेक्शन की तरह काम करेंगी, क्योंकि आपका मन भटकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। आप प्ले ग्राउंड से ज्यादा अपने मन में खेलते हैं, और मन में जब इनकॉर्पोरियल की उस इनकॉर्पोरियल की शक्तियों को अपने बीच में आप रखेंगे, अपने साथ सदा रखेंगे, तो आप अर्जुन की तरह विनर बनेंगे, हर गेम में विनर बनेंगे। ये आप लक्ष्य लेकर के चलो, इस विंग के साथ जुड़ने से आपको ये मदद मिलेगी। इतना ही आपने आपके बीच में मैं मोटिवेशन के रूप में रखना चाहता हूं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
थैंक यू रविंदर भाई जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर कायम रहिए, अड़िग रहिए, अर्जुन की तरह से अड़े रहिए उसी लक्ष्य पर। तो एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र भाई जी के लिए, रविंदर भाई जी के लिए। और अभी बहुत ही एक महान विभूति, महान हस्ती हम लोगों के बीच में आदरणीय शशि दीदी जी, जैसे कि आप सभी परिचित भी हैं उनसे, आप जॉइंट चीफ हैं ब्रह्मा कुमारीज की और स्पोर्ट्स विंग की चेयरपर्सन हैं। आपने अनेक देशों में स्पोर्ट्स विंग की सेवाओं को भी बढ़ाया है, और ये स्पोर्ट्स विंग जब बहुत छोटे से शुरू हुआ था, आज एक बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में फैल रहा है, उसकी सारा श्रेय आदरणीय दीदी जी को ही जाता है। तो अभी हम सुनते हैं आदरणीय शशि दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी पिछले 4 दिनों से स्पोर्ट्स से संबंधित और राजयोग से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं, और आज हम सब वैलिडिक्ट्री सेशन के लिए बैठे हैं। ये कोई वैलिडिक्ट्री सेशन नहीं है, ये तो एक हमारे नए जीवन की शुरुआत है, वेल बीइंग है, और हम अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर नई नई बातें अपने साथ लेकर के जाएंगे। और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये इस प्रकार से सेमिनार का आयोजन करना, एक तरफ तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हुआ होगा, क्योंकि आप तो चलते फिरते घूमते प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन 3-3 दिन तक यहाँ पर बैठ करके इन आध्यात्मिक बातों को सुनना, स्पोर्ट्स के लिए नई नई बातें सुनना, अपने जीवन के अंदर विशेष मोटिवेशनल बातों को सुनना, ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज भी हैं, चैलेंज के साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति भी रही है और शक्ति के साथ साथ बहुत बड़ी प्राप्ति भी आप सबके लिए रही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा और हमारी आदरणीय दादियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। धन्यवाद के साथ साथ दादियों की तरफ से आप सबके लिए यही शुभकामना करती हूँ कि आप सदा अपने जीवन के अंदर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते हुए भारत देश का नाम रोशन करें। यहाँ पर आए आपने बहुत सी बातें सीखी भी हैं और अपने पास नोट भी की हैं, लेकिन कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप देखते हैं अपने जीवन के अंदर हम क्या करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले अपने आप को पहले दर्पण में देखते हैं कि मैं कैसा हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी और मेरा रूप क्या होगा। अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तो इसलिए एक तो हम देखते हैं दर्पण में देखते हैं, दूसरे कुछ लोग देखते हैं जो अपने जो पॉकेट में दर्पण रखते हैं, तीसरे प्रकार के लोग देखते हैं अगर दर्पण नहीं है, जब स्कूटर चला रहे तो स्कूटर के दर्पण में देखते हैं या फिर कार के दर्पण में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक आध्यात्मिक दर्पण अपने साथ लेकर के जाना है। वो आध्यात्मिक दर्पण, दर्पण मीन्स द प्लस अर्पण, तो द है डिविनिटी का साइन कि हम जो भी कार्य करें हम अपने जीवन की मर्यादाएं, हम अपने जीवन की जो शक्तियां हैं, जो डिविनिटी जो शक्ति परमात्मा ने हमको दी है उसको हम नहीं भूलें। क्योंकि जब आप खेल के क्षेत्र में जाते हैं आपके पर्टिकुलर टी शर्ट होती है, पर्टिकुलर ड्रेस होती है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैराथन रेस में जाते हैं, कोई व्यक्ति मैराथन रेस में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस न करके साइड में दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसको मेडल नहीं मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उस रास्ते को अंदर नहीं खेला है जो कि रूटीन जो रास्ता उसके लिए फिक्स किया गया था। इसी प्रकार से हमें प्लेयर्स को अपनी डिविनिटी, डिविनिटी मीन्स मैं आत्मा प्योर हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा एक खिलाड़ी हूँ, परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ खेल खेल करने के लिए इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर भेजा है। अपने ओरिजिनल स्वरूप को, अपनी शक्तियों को हम कभी ना भूलें। और दूसरी बात, जब अर्पण है, अर्पण मीन्स डेडिकेशन, हम अपने खेल के प्रति डेडिकेशन की फीलिंग्स को रखें, क्योंकि जितना आपका डेडिकेशन होगा उतना आपके खेल के ऊपर कंसंट्रेशन होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा उतना आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना आप उस पर वर्क कर सकेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो यहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की कई बातें सुने, तो स्पिरिचुअलिटी के आधार से दर्पण मीन्स हमें अपने आप को जानने, अपनी एबिलिटीज को जानने, अपने बारे में जो जानकारी मिलती है उससे हम कभी भी अपने जीवन के अंदर निरुत्साहित नहीं होते हैं। हम आपको बताएं कहाँ कहाँ ऐसे म्यूजियम बने होते हैं, जैसे ऐसा ग्लास होगा जिसमें व्यक्ति बहुत लंबा दिखाई देता है, दूसरा ग्लास ऐसा होता है जिसके अंदर बिल्कुल ठिगना सा एक से छोटा सा दिखाई देता है, लाफिंग म्यूजियम होता है, और तीसरा ऐसा होगा जिसमें बहुत मोटा दिखाई देता है, चौथा ऐसा दिखाई देता है जिसमें उसका डिफरेंट फेसेस दिखाई देते हैं। तो वो ऐसा बना करके लोगों को एंटरटेन करते हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन से संबंधित है कि जब हम किसी बात के बारे में काम कम करते हैं, अपनी बढ़ाई ज्यादा, अपना बहुत कुछ मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ये स्थान नहीं मिला, अगर मेरे को ये स्थान मिला होता, मेरे कोच ने मुझे दिया होता, आज मैं मेडल लेके आता। लेकिन मेडल लेके आने वाला कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। वो अपने आप को बिना प्रैक्टिस किए अपने आप को लंबा करता जाता, ऊंचा करता जाता है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। दूसरा है, कुछ लोग ऐसे हैं खेल करने से पहले बहुत चिंतित हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं, सोचते रहते क्या होगा कैसा होगा, नर्वस सिस्टम सारा ही बिगड़ जाता है। जैसे उनका आंतरिक नर्वस सिस्टम बिगड़ा तो उनके ऊपर कई प्रकार का ऐसा लगता बहुत बड़ा बोझ है, तो उसको हम कहते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट से, इमेजिन थॉट से उसने अपने आप को इतना भारी कर दिया है जिस कारण से वो खेल नहीं कर पाता है। तीसरी बात ऐसी आती है, कभी कभी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो जो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण उनकी जो एबिलिटीज हैं वो एबिलिटीज होते हुए भी उसका यूज नहीं कर पाता है, एकदम हाई जाते एकदम ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, राजयोग यही सिखाता है कि हमें अपने क्षेत्र के अंदर बैलेंस रखना। बैलेंस मीन्स अपने अंदर की शक्तियों को यूज करना है और उन शक्तियों के आधार से हम अपने जीवन के अंदर अपनी इनर पावर्स का प्रयोग करें और इनर पावर्स का प्रयोग करें। और तीसरी बात जो है, हमें गोल ओरिएंटेड बनना है कि मुझे क्या लेना है। वैसे हम एक कहानी तो सुनते ही रहते हैं, फिर से मैं उस कहानी को रिपीट कर रही हूँ। जब अर्जुन को कहा गया कि तुम मछली की आंख में तीर लगाओ, अब मछली की आंख में तीर लगाओ तो उसको बोला तुम क्या देख रहे हो, पेड़ देख रहा हूँ, फिर क्या देख रहे हो, डॉली देख रहा हूँ, डॉली के ऊपर क्या देख रहे हो, मछली देख रहा हूँ, फिर बोला क्या देख रहे हो, मछली की आंख देख रहा हूँ, लगाओ तीर। जब कर आंख देख रहा हूँ तब उसे कहा लगाओ तीर, मीन्स जहाँ हमारा गोल है उसमें हमने अपना कंसंट्रेशन किया, तो जहाँ कंसंट्रेशन होता है वहाँ ऑटोमेटिकली हमारा कार्य ठीक होता है। तो इसीलिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया कि आप राजयोग के माध्यम से अपने माइंड पावर को डेवलप करें और कंसंट्रेशन की शक्ति को बढ़ाएं, और कंसंट्रेशन की शक्ति न केवल खेल जगत के अंदर अपितु आपकी अपनी लाइफ में, कारोबार में, परिवार में, समाज में, लोगों के संबंध में आते हैं उसमें उसका प्रयोग करें। और कंसंट्रेशन के पावर से जब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा भी जानते हैं कि इनका लाइन का क्लियर है। मानो कि आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, चार्ज नहीं होंगे, तब तक आप अपने मोबाइल से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब हमारे अंदर इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो हमारी आत्मा की सारी शक्तियां डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसके लिए आपको ये राजयोग का माध्यम बताया गया है। राजयोग अथवा परमात्मा से संबंध जोड़ने से हमारी आत्मा की जो शक्तियां डिस्चार्ज हो गई हैं वो फिर से चार्ज हो जाती हैं, और उसको चार्ज करते ही हमारे अंदर वो एनर्जी का स्रोत जागृत हो जाता है। जैसे कहीं पर जाते हैं ना, ये फाउंटेन है, यहाँ पर ये फुहारा है, यहाँ पर ये चल रहा है, तो इस प्रकार से एनर्जी का स्रोत ऐसे जागृत हो जाता है फाउंटेन की तरफ, चारों ही तरफ हम ये फील करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और मैं विजयी हूँ। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा हमें हमेशा कहा करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमेशा हमें कहा करते थे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारी बैकबोन है। अपना बुद्धि रूपी हाथ उनके हाथ में दें तो सफलता तो हुई पड़ी है। कई बार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण काम पांडवों के साथ दिखाते हैं और पांडवों के साथ दिखाते हैं, पांडव थे 5 और कौरव थे अक्षौणी सेना, लेकिन 5 पांडवों की बैक कौन था? श्री कृष्ण था, जिस कारण से वो 5 पांडव हर क्षेत्र में विजयी रहे। इसी प्रकार से जब हम अपना कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं तो उनके द्वारा हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम साधारण हैं, चाहे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल थोड़ा कम दिखाई देता है, और दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, उनके खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते। अब हम आपको बताना चाहे, एक बार हम एक्वाडोर में थे, वो छोटा सा कंट्री है और गरीब लोग हैं, खाने को भी इतना नहीं है, लेकिन वहाँ के प्लेयर्स इतने जबरदस्त, जब वो दौड़ मैराथन रेस होती तो वो प्लेयर्स तो सब जगह जीत करके आते। तो हमने पूछा क्या कारण है, तो उन्होंने बताया ये प्लेयर्स के अंदर एक हिम्मत है, एक उत्साह है। अभी कई बार हम देखते हैं मैराथन रेस में, कई बार हमने यहाँ पर मैराथन रेसेस ऑर्गेनाइज भी की है, और जैसे भारत के अंदर कई मैराथन रेसेस ऑर्गेनाइज भी होती है, नैरोबी केनिया अफ्रीका से ऐसे आते हैं बिल्कुल पतले पतले लड़के, और वहाँ पर इतनी गरीबी भी है, सब जगह गरीबी नहीं है, कुछ शहरों के अंदर वो जब यहाँ आते तो नंबर फर्स्ट प्राइज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है उनके माइंड का एनर्जी लेवल जो है और माइंड की जो थिंकिंग है वो इतनी पावरफुल है, हाई है, सब साधन ना होते हुए भी वो अपने लक्ष्य के अंदर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए हमें सभी प्लेयर्स को एक बात का ध्यान रखना है, अपने माइंड के पावर के लेवल को कभी भी डाउन नहीं करना है, माइंड के एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखना है, उसके बनाने के लिए परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सारा दिन अपने कारोबार के अंदर प्रैक्टिस के अंदर इतना व्यस्त होते हैं, परंतु सारे दिन के अंदर कोई ना कोई टाइम 1 मिनट 2 मिनट निकाल करके साइलेंस में बैठें, अपने आप पे कंसंट्रेट करें, विजुलाइज करें, तो आप देखेंगे कैसे सारी एनर्जी अंदर से बाहर की ओर आ रही है और आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि बहुत रिफ्रेश हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक है। दुनिया में वे ऑफिस में जब काम करते हैं कोई लोग, जब थक जाते हैं तो 5 मिनट वॉक करने लगते हैं, या कोई चाय पियेंगे या कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ साधन लेते हैं। तो प्लेयर्स के लिए सच्ची सच्ची एनर्जी लेवल बढ़ाने का जो है 1 मिनट या 2 मिनट सारे दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिले साइलेंस में बैठकर अपने आप को विजुलाइज करें और अपना मन राज्यों के माध्यम से परमात्मा की ओर लगाएं, फिर आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर कितना एनर्जी लेवल हाई लेवल पर जा रहा है। फिर से आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, और जब जब आपको टाइम मिले तो हमारे जो राजयोगा सेंटर हैं वहाँ पर भी जाकर के आप उस और अभ्यास कर सकते हैं। और मेरी यही शुभकामना है, परमात्मा से यही कहना है कि आप सब अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते रहें और सबको साथ लेकर के चलते रहें, सदा जीवन में खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। खुश रहने से ही वातावरण श्रेष्ठ और प्राप्ति रहती है। इन्हीं शब्दों से आप सबको बहुत बहुत मेडल्स के लिए इन एडवांस मुबारक हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड शशि दीदी जी। तो मैं दीदी चाह रहा था कि 1 या 2 भाइयों का अभी एक्सपीरियंस आपको सुना दें, क्योंकि टाइम है तो कुछ सुनाना चाहते थे वो। जो फर्स्ट टाइम आए वो हाथ खड़ा करें, फर्स्ट टाइम। ओके, तो आप में से कोई एक भाई और एक बहन यहाँ एक्सपीरियंस सुना सकते हैं, नीचे माइक है, कौन सुनाना चाहेंगे? रोहितास भाई आप सुनाएं, माइक उधर है नीचे। अगर तेजस फर्स्ट टाइम आया तो आप भी सुना सकते हो, आगे आ जाओ।
ओम शांति। सभी मंचस्थ महानुभाव को मेरा प्रणाम, विराजमान सभी साथी स्पोर्ट्स खिलाड़ी कोच आपको भी मेरा अभिनंदन। मैं जयपुर का रहने वाला हूं और कोरोना से पहले मेरे अदर व्यवसाय थे, कोरोना के बाद मेरा दूसरा व्यवसाय चालू हो गया। चूंकि मैं योग और प्राणायाम शुरू से ही करता आ रहा हूं, मेरा पहला जो खेल था वो बैडमिंटन था, जो मैंने लगभग 93-94 में स्टेट लेवल पे खेला। उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमें गेम को छोड़ना पड़ा, लेकिन प्राणायाम और योग को मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद व्यवसाय में पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी चलती गई कि हमें परिवार की ओर ध्यान देना पड़ा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो योग है, प्राणायाम है, ये आपके जीवन को अलग दिशा प्रदान करते हैं। और ये एक इंसिडेंट था, कोइंसिडेंस भी कह सकता हूं मैं, कि मैं मेरे जॉब के ऊपर था और मैंने भाई जी जगबीर जी को जब मुलाकात हुई मेरी, तो एक मन में उमंग थी कि ये व्यक्ति कौन है। ये शायद रिफ्रेशमेंट लेके जा रहे थे वहां से, तो मैंने रोका, भाई जी एक मिनट रुकना, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? तो इन्होंने जो अपना परिचय दिया, वो परिचय मुझे इंस्पायर कर गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ जुड़ूं। क्योंकि मेरी एक लक्ष्य है कि जब भी मैं कोई नई चीज देखता हूं तो उसको पकड़ने का प्रयास करता हूं, और इसी श्रृंखला में मैं इंटरनेशनल वास्तु अवार्ड को लेने के लिए मैं इजिप्ट भी गया, क्योंकि मुझे वास्तु का भी बहुत चस्का कह सकते हैं, शौक कह सकते हैं, तो मैं इसको भी बारीकी से देखता रहता हूं। तो मुझे ऐसे ही पता चला कि वर्कशॉप हो रही है इजिप्त में, तो 2018 में इजिप्त पहुंच गया उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। उसी श्रृंखला में जब मुझे पता चला कि माउंट आबू में एक बहुत बड़ी संस्था है ब्रह्म कुमारी, मैं चोमू एरिया से आता हूं जहां ब्रह्म कुमारी का संस्थान है, और मैं उसके सामने से काफी बार निकला हूं क्योंकि रेलवे स्टेशन जो है वो उसके बाद में है। तो जब भी मैं उधर से निकला हूं, मेरे मन में एक विचार है कि एक बार इसमें चलना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं 40-42 साल का हो चुका, कभी मौका ही नहीं मिला उसके अंदर जाने का। आपसे मिलने के बाद मुझे प्रेरणा मिली, आपका फोन आया कि एक बार मैं ब्रह्म कुमारी स्थान पे जाऊं। मैं वहां मंगला बहन से मिला, उनका मोटिवेशन, उन्होंने जो मोटिवेट किया, मैंने हाथों हाथ भाई जी को फोन करके कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो और मैं आ रहा हूं। छुट्टी ना मिलने के बावजूद भी मैं यहां पहुंचा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो मैं यहां से लेके जा रहा हूं और जो राजयोग की मैंने प्रेरणा ली है, राजयोग को थोड़ा वो सीखा है, उस राजयोग को मैं आगे 7 दिन का कोर्स अवश्य करूंगा। और मैं इस संस्थान से जुड़ करके, मैं जिस भी फील्ड में पारंगत हूं, मैं इनके साथ जुड़ करके अपने भविष्य को और समाज के भविष्य को भी सुधारने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ओम शांति।
के यादव जी आप थोड़ा सुनाएंगे। दीदी आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मतलब जॉब करते हैं और अनेक मैराथन दौड़ चुके हैं, तो मैराथन के थ्रू ही इनसे कांटेक्ट हुआ था। तो कितनी मैराथन दौड़ चुके हैं अभी तक?
ओम शांति।
हाँ,
मंच पर बैठे दादी बीके शास्त्री जी एम समस्त आदरणीय महानुभव और भाई जगबीर और खेल से जुड़े सभी खिलाड़ी और सभी कोचेज को मेरी तरफ से अभिनंदन। मेरा नाम के यादव है, मैं जयपुर एयरपोर्ट पर सीनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैंने 2016 में मैराथन स्टार्ट की थी उसी समय मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर गया और ये राजयोग का 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद में मैंने सबसे पहले 5 किलोमीटर की दौड़ करी, फिर मेरे को लगा कोई थकान नहीं हुई, फिर मैंने 10 किलोमीटर किया, फिर भी लगा थकान नहीं हुई, फिर मैंने 21 किलोमीटर किया, फिर भी सोचा थकान नहीं, फिर 42 किलोमीटर किया, फिर भी सोचा थकान नहीं, फिर 50 किलोमीटर तक किया। और मैं 2016 से लगातार दिल्ली एयरटेल हाफ मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर, टाटा अल्ट्रा मैराथन 2016 से 2023 तक लगातार पार्टिसिपेट करता हूं, और साथ में मेरी वाइफ भी करती है मैराथन। और एक बार जगबीर भाई को दोबारा पुनः कि जगदीर भाई की वजह से आज ये प्रोग्राम अटेंड कर पाया, इनके लिए मैं सारी उम्र एहसानमंद हूं, शुक्रिया, धन्यवाद।
दीदी, कोई भी बहनें जाती हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ बहुत हर तरह की मदद करते हैं। इनकी मिसेज भी वहाँ है, बेटी भी वहाँ है। हाँ हाँ, वो पीछे बैठे, हाथ खड़ा करो बहन जी। इनकी बेटी भी यहाँ पे बैठी है, वो भी मैराथन दौड़ती है। चलो, थैंक यू यादव जी। हाँ दीदी, ये कन्या से भी परिचय कराना था। ये अभी इन्होंने कोरोना के बाद पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट किया, 12वीं पास करके अभी साउथ अफ्रीका में गई, तो सबसे टॉप जो वहाँ का पहाड़ था वो क्लाइम किया, अब एवरेस्ट पे चढ़ने जा रही है 2 महीने के बाद, माउंट एवरेस्ट। बताओ आप थोड़ा। वो
ओम शांति, मेरा नाम योगेश्वरी बोहरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और कोविड के बाद मैंने इस माउंटेनियरिंग में करियर स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे स्पोर्ट्स मतलब एस भी पता नहीं था स्पोर्ट्स का क्या होता है, तो स्टार्टिंग में मैं रनिंग के लिए गई, तो मुझे 50 मीटर्स भी मैं भाग नहीं पा रही थी, मतलब थोड़ा भी नहीं भाग पा रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करूंगी तो मैं कैसे एवरेस्ट चढ़ूंगी, तो तब तो ऐसे ही मोटिवेशन था कि करना ही है, बाबा तो साथ में थे ही, बचपन से ज्ञान में है, तो तब इतना कुछ लगा नहीं। लेकिन जब अभी मेन बात आई कि एवरेस्ट जाना है, तो इस स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत थी। मैं लकी मानती हूँ कि मैं इस स्पोर्ट्स विंग में आई हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सालों से आती हूँ मधुबन, लेकिन अभी कोविड के बाद में मैं पहली बार मधुबन आई हूँ, वो भी स्पोर्ट्स विंग में, वो भी नई शुरुआत करने के लिए। मैं जब अफ्रीका के हाईएस्ट पीक पे गई थी, जाने से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मेरा लेफ्ट साइड पूरा इंजर्ड था, तो मैं ऊपर गई फिर भी, तो 5000 मीटर पे जाके ऐसा लगा कि गिव अप कर देते, मुझे नहीं जाना है आगे, मैं क्यों आई हूँ यहाँ। तो फिर सोचा कि नहीं, इतना सब एवरेस्ट जाना है तो ये तो छोटी बात है, तो वहां जाके थोड़ा ब्रेक लिया, फिर भी वो क्लाइम किया। ऐसे मतलब मैंने बहुत से माउंटेन्स क्लाइम किए जहाँ मुझे बहुत मुश्किलें आई है, लेकिन बाबा हमेशा साथ होते हैं, सिखाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे आगे जाना है।
तो वो तंजानिया का जो पहाड़ था कितने फीट पे, तो कितने मीटर में था?
5894 मीटर।
तो यहाँ से नीचे से तो आराम से ऊपर आ जाओगे आप शांतिवन से।
हाँ।
okay. चलो, ऑल द बेस्ट दीदी। दो शब्द बोल दो इसके लिए, एवरेस्ट के लिए। ऑन कर देते दीदी। सुरेश भाई, ये दीदी वाला माइक देना, ऑन करना।
हम सब, आप सब इस बहन के लिए, नाम क्या?
योगेश्वरी
बहन, नाम भी बहुत
औरंगाबाद से है,
औरंगाबाद से योगेश्वरी बहन के लिए यहाँ कार्यक्रम में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप एवरेस्ट पर जाएं और पूरे ही परिवार भारत का नाम रोशन करें, अपने परिवार, माँ बाप और स्पोर्ट्स विंग और भारत का नाम रोशन करें। जोरदार कल्तर ध्वनि से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आगे बढ़ें और अवश्य ही आप एवरेस्ट पर पहुंचेंगे। साथ में और भी होंगे ना, टीम होगी, आप टीम होता है वहां पर के, ठीक है, ओके।
फिर जाने के बाद अनुभव सुनाना है आके।
जैसे आपसे मैं मिली थी तो आपने कहा था नेपाल से एक मैम थी जो एवरेस्ट क्लाइम किया था,
अंशु जैन सप्पा, हाँ दीदी से आशीर्वाद लेके गई थी वो,
और उन्होंने ऊपर जाके एक्सपीरियंस किया था बाबा का,
शिव बाबा
का। हाँ मैं भी वो वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ।
तो शिव बाबा का झंडा ले जाना आप वहाँ।
मैं हर जगह लेकर जाती हूँ बाबा का झंडा, अफ्रीका के हाईएस्ट पीक पे, यूरोप के हाईएस्ट पीक पे बाबा का झंडा लहरा चुका है।
थैंक यू। लास्ट तेजस भाई आप आ जाइए, आपको कैसा अनुभव रहा? अच्छा वो सिस्टर भी ऑन कर लो।
ओम शांति। मेरा नाम तेजस है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं स्केटिंग करता हूँ। अभी तक मैं स्टेट लेवल तक पहुंचा हूँ, लेकिन इस कैंप के बाद ये जो सेशन है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो ड्रीम है इंडिया के लिए गोल्ड जीतना है वो कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक यू।
थैंक यू
सिस्टर। लास्ट
ओम शांति। मेरा नाम चरणजीत है और मैं पैरा बैडमिंटन खेलती हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो किसी को बोलते कुछ भी वो बोलते मैं दो मिनट में आया बहन, दो मिनट में वो आके जैसे बोल के जाता है तो जैसे लगता जैसे पता ही नहीं कौन बोल के गया था। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है बच्चे समझ ही नहीं आता अपना बच्चा कौन सा है, तो तो यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं तो कंफ्यूज होंगी सारा दिन ही कंफ्यूज होंगी, या तो मैं कौन बोल रहा है क्या कर रहा है पता नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे मैंने लोगों में जो एक चार्म है यहाँ पे देखा मैंने आके, सब अपने अपना काम करते हैं और किसी के फेस पे कोई शिकन नहीं है और सब डेडिकेशन से लगे हुए हैं और किसी को कोई प्रेशर भी नहीं है किसी चीज़ का कि नहीं आपको ये काम अच्छे से करना है अदरवाइज ये जो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ये स्पोर्ट्स विंग जो है मैंने अटेंड करा है, वैसे तो मैं ज्ञान में हूँ बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मधुबन में। तो मुझे लगता है एक्चुअली ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैजिक है कि बाबा को जो मैजिक चल जाता है आपके ऊपर तो आपकी जो दुनिया है एकदम बदल जाती है। वही लोग होते हैं वही सब कुछ होता है लाइफ में, लेकिन हमारे जो देखने का जो विजन है उन लोगों को वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। हम हर एक जो भी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। तो थैंक यू सो मच बाबा एंड थैंक यू फॉर एवरीवन कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ये छोटा सा बच्चा और लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा है एंड आफ्टर दैट थैंक यू।
ओम शांति। मेरा नाम साईराज है, मैं महाराष्ट्र में रहने वाला एक बच्चा हूँ। मैं पुणे से आया हूँ। मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं मतलब पहले आर्मी कैंप में रहता था क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं। हम जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे बास्केटबॉल फुटबॉल के बास्केटबॉल के तीन ग्राउंड थे और फुटबॉल के एक बड़ा सा ग्राउंड था। फिर हम सारे दोस्त थे, मेरे सारे दोस्त थे जो हम मतलब कम से कम 20 के आसपास दोस्त थे। हम 10-10 की टीम बना के फुटबॉल खेलते थे। उस समय मेरे को फुटबॉल नहीं आता था बिल्कुल भी। फिर मैंने जब हम पापा मतलब अभी रिटायर हो गए फिर हम पुणे में वागुली में शिफ्ट हो गए थे। फिर मेरे एग्जाम चल रहे थे, पापा ने बोला एक बार तेरे एग्जाम होने दे फिर हम तेरे को फुटबॉल या बास्केटबॉल की क्लासेस लगाते हैं, क्योंकि तब मेरे को फुटबॉल से अच्छा बास्केटबॉल आता था। लेकिन मेरे को फुटबॉल ज़्यादा पसंद था, इसके लिए मैंने सोचा पापा से कि पापा मेरे को बास्केटबॉल का नहीं लगाना क्योंकि वो मेरे को पहले से आता था। फिर हमने जैसे एग्जाम खत्म हुए मेरे पापा ने फुटबॉल का लगाया। फिर हम जैसे उधर गया मैं कोच के पास मतलब जहाँ पे वो सिखाते हैं, फिर उनसे मिला, उनने बताया कि ऐसे मतलब वो जो मतलब फुटबॉल में क्या क्या ट्रिक्स वो रहते हैं। फिर एक दिन उधर एक भैया आए जो नेशनल लेवल खेलते थे इंडिया की तरफ से, उनके साथ एक स्पिन के साथ मैच था उनका जिसमें उन भैया ने उनके अकेले के तीन गोल थे और स्पिन के 0 गोल थे। इसके लिए मेरा भी एक सपना है कि मैं इंडिया के लिए मेडल जीत के आऊं फुटबॉल में. थैंक यू.
बहुत खूब बच्चे. सफलता है उनकी जिनके सपनों में जान होती है, और ताकत पंखों में नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. तो ये छोटे छोटे बच्चे जिनका हौसला इतना बड़ा है, इनको देख के हमें भी अंदर से खुशी आ रही है, उमंग आ रहा है. और ये सक्सेस है हमारी इस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस की, ये बता रही है कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन जागा है, तो जाके हमारे देश के लिए मेडल अवश्य ही आएंगे, अवश्य ही आएंगे. चलिए अभी हमारे बीच में है बीके भगीरथ भाई जी. आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं ग्वालियर से, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं बीके भगीरथ भाई.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. पिछले चार दिन से अपन लोग सभी लोग भाई बहनों के द्वारा से जो भी मिलते हैं सभी ओम शांति कहते हैं. ओम शांति का अर्थ है कि हम सभी शांत स्वरूप आत्मा हैं. पिछले चार दिन से आप लोगों को बहुत अच्छी सुंदर सुंदर हमारे फैकल्टी मेंबर्स द्वारा मोटिवेशनल, पॉजिटिव थिंकिंग, हॉलिस्टिक फिटनेस के अन्य तरह की क्लासेस कराई जा रही. आज इस सत्र का समापन समारोह है. सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का दिल से हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा. तो हम सब रचना है, वो रचिता है. और सबसे पहले प्रथम हमारी शशि परम आदरणीय बीके शशि दीदी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, वाइस चेयरपर्सन स्पोर्ट बिंग माउंट आबू का बहुत ही हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ. दीदी ने सभी को बहुत आशीर्वचन दिए परमपिता परमात्मा की तरफ से. हमारे फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनको वो आदि देव भी कहते हैं, और हमारी दादियों की तरफ से भी आशीर्वचन दिए गए. सभी आशीर्वचन लेके जाएं और कामयाबी अवश्य मिलेगी. ये वरदानी भूमि है, परमात्मा की अवतरण भूमि है. सब समस्याओं का समाधान परमपिता परमात्मा है. अगर हमारा परमपिता परमात्मा से कनेक्शन होगा तो इम्पॉसिबल है ही नहीं है, सब संभव है. हमारे बीके जगवीर भाई जिन्होंने स्पोर्ट विंग के भारत को और अन्य देशों को मेडल दिलाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब स्पोर्ट विंग के जो फैकल्टी मेंबरों के द्वारा ट्रेनिंग वगैरह बनाए गए हैं, उनको भी मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. हमारे पूना से जो आए हुए संजय दुधानी भाई जी ने बहुत अच्छा बताया कि हिम्मत नहीं हारिए, हिम्मत नहीं हारिए, और मसाल कामयाबी की मसाल जलाते जाइए. उन्होंने बताया कि मेरे को कई बार यहाँ आने का अवसर मिला लेकिन मैं नहीं आ पाया, और अभी अवसर मिला. फिर उन्होंने बताया कि ओलंपिक, पहला ओलंपिक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी. उस समय पैसा नहीं था, कलेक्शन करके उनको भेजा गया और ओलंपिक लेके आए. उनका भी मैं दिल से परम आदरणीय भाई जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. हमारे परम आदरणीय बीके बीरेन सिंह गुड़गांव से आए थे. उन्होंने भी बहुत अच्छे मतलब टॉप बताया कि हमारे पांच सेक्टर हैं, फिजिकल, सोशल, फाइनेंस, स्पिरिट और निरोगी. इसके लिए हम लोगों को निरोगी काया कैसे रहें, इसको कैसे अप्लाई करें, उनका भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. हमारे परम आदरणीय बीके रविंद्र भाई जी जो जम्मू से आए हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट विंग पंजाब के हैं. लक्ष्य होगा तो कामयाबी अवश्य मिलेगी, भटकना नहीं है, लक्ष्य को रखना है. उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. हमारे कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर बी के डॉक्टर दिनेश भाई जी जो पिछले चार दिन से आप लोगों को योगा भी करा रहे हैं और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया, उनका भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ. हमारी बहनों के द्वारा जो आपको बहुत अच्छा मतलब डांस किया गया, उनको भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ. जब से आप आए हैं ट्रांसपोर्ट विंग, हमारी बहुत सारी जो मतलब अकोमोडेशन वगैरह ट्रांसपोर्ट विंग आबू से ज्ञान सरोवर के लिए जब आप आए थे समय पे जो आपका ट्रेन का टाइम था समय पर आपको लेके आए और ये यहाँ पर समय पे छोड़ा उनका भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। एकोमोडेशन आपको जब आए थे आपको बहुत सुंदर बहुत अच्छी एकोमोडेशन की व्यवस्था कराई गई एकोमोडेशन डिपार्टमेंट को भी मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किचन डिपार्टमेंट में आपको नाश्ता दोपहर का खाना शाम का खाना समय पे चाय वगैरह बहुत तरह का सात्विक भोजन सात्विक और योगिक और वो भी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के द्वारा जो समर्पित भाई बहन है उनके द्वारा सात्विक भोजन बनाया गया और खिलाया गया सभी को बड़े प्यार से प्रेम से सभी को खिलाया गया उनका भी मैं हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पानी डिपार्टमेंट आप लोगों को जगह जगह गर्म पानी ठंडा पानी की व्यवस्था जो पानी विभाग वालों ने की उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिजली विभाग जब से आप आए हैं आपने देखा होगा कभी लाइट का भी फ्लक्चुएशन या लाइट कभी नहीं गई उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। साउंड डिपार्टमेंट ये स्टेज पे जो साउंड की है उनका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल है अगर किसी को कोई गए होंगे दवाई वगैरह लेने डॉक्टर और पूरी टीम का भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। टोली डिपार्टमेंट है एक प्रसाद का सभी को प्रसाद मिला होगा नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा तो उनका भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दूध और दही कहते हैं कि दूध दही की भारत में नदियां बहती थी वो आपको यहाँ देखने को मिला होगा दूध और दही डिपार्टमेंट वालों को भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कल्चर प्रोग्राम के लिए बहुत सारी बहनें श्रीगंगानगर उड़ीसा से आए थे उनका भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। स्टेज बहुत सुंदर स्टेज की व्यवस्था जिन बहन भाइयों ने संभाली उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई भूल और ज्ञान सरोवर के अथक सेवादारी भाई जो रात दिन सेवा 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 में लगे रहते हैं उनका भी मैं दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो सभी आए सभी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी दादी और हमारे जो भाई लोग कैमरा डिपार्टमेंट के भाई कैमरा बहुत अच्छा इन्होंने पूरे मतलब भारत और पूरे विश्व के इस प्रोग्राम का ब्रॉडकास्ट किया यूट्यूब वगैरह और अन्य जो हमारे आईटी सेक्शन के हैं और भी हैं जो रह गए हैं उनका सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। और आप लोगों का भी जो आप लोगों का इतना कीमती समय देकर आप लोग यहाँ आए सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू। और
आपने धन्यवाद ज्ञान सरोवर के सभी भाई बहनों को दिया। सबसे पहले हम दीदी निर्मला जो कि ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं उनको एक बार करतल ध्वनि से बहुत मन की भावनाओं से उनका सत्कार और उनको धन्यवाद करते हैं। मैं देख रही हूँ ज्ञान सरोवर में तो इतने डिपार्टमेंट हैं अगर हम एक एक का नाम लें वो भी याद नहीं रहेगा। ज्ञान सरोवर का कोई भी डिपार्टमेंट और छोटे से लेकर बड़ा सफाई से लेकर के खाना खिलाने तक कोई भी डिपार्टमेंट है जो भी डिपार्टमेंट है और जिन्होंने ज्ञान सरोवर के वातावरण को इतना सुंदर बनाया है चाहे लिटरेचर है चाहे गार्डन है चाहे सफाई है कुछ भी है जो भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट इंचार्ज और सेवा साथियों का हम स्पोर्ट्स विंग की तरफ से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोर से करतल ध्वनि से आप सबका इतना अच्छा रहा कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं रहा कोई तकलीफ नहीं आई वो सब श्रेय परमपिता परमात्मा और ज्ञान सरोवर के सभी विभागों के भाई बहनों को देते हैं। ऐसे स्थान पर आपको फिर से आने के लिए भी वो सदा तैयार रहते हैं इसलिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे भागीरथ भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू। अभी दो मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठकर कार्यक्रम को संपन्न करते हैं।